देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। आज आर्य समाज का नौवा नियम, नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज। मेरे साथ बोलिए मिलकर हिंदी वाला, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बहुत ही सुंदर सूत्र है, कहता है नो वन शुड बी कंटेंटेड विथ हिज ओन अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस अलोन, बट एवरीवन शुड रिगार्ड हिज ओन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इन द कॉमन गुड ऑफ ऑल। ये सोसाइटी और इंडिविजुअल की रिलेशनशिप को बताता है, और इसको न केवल समझने की जरूरत है, इसको डाइजेस्ट करने की भी जरूरत है। हमारा जो जीवन है वो अकेले में नहीं चल सकता। आपके पास सब कुछ भी हो पर आप किसी आइलैंड में अकेले हो, आपका कोई भी नहीं है आपके आसपास, तो भी नहीं आप जी सकते। इवन जीने के लिए कभी शत्रु की भी जरूरत पड़ती है। जिसके साथ आप बहुत ज्यादा लड़ते हैं वो आपके फैमिली में हो, पड़ोस में हो, अगर रोज आपकी लड़ाइयां भी होती है, झगड़ा होता है, और अचानक 10-20 साल के बाद वो घर छोड़ के चले जाए या नेबरहुड छोड़ के चले जाए, आपको महीनों तक प्रॉब्लम होता है, आदत पड़ चुकी होती है। हम दूसरों के बिना जी नहीं सकते, हमारा सुख भी दूसरों पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमें अपनी खुशी दूसरों के खुशी के बीच में ढूंढनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए हम अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे। सैक्रिफाइस करना सिर्फ जब कोई डिस्ट्रेस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तभी कोई एक्सपेक्ट करता है। नॉर्मली कोई नहीं चाहता है कि कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे के लिए लाइफ अपना बलिदान दे दे। हाँ, जब हम दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं तभी हमारी खुशी हमें मिलती है, क्योंकि हमारा जो सुख या दुख का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरों पर डिपेंड करता है। सपोज करिए कि आप ऐसे एक देश में रहते हैं जहां कोई फ्रीडम नहीं है, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, नेशन ऑफ स्लेव्स में आप रहते हैं, तो जब आपको वहां फ्रीडम, जिस देश में आप रहते हैं फ्रीडम नहीं है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, पैसे वाले हो, तो आप हमेशा आधे दुख में जीते हैं, क्योंकि आप अपनी मन की बातें ना बोल पाते ना कर पाते। आपका ज्ञान, आपका धन, आपकी जो मेहनत, जो आपके पास है अचीवमेंट है, वो सिर्फ आपका नहीं होता है। आप उतने मेहनत करके उतने ज्ञान से भी किसी एक ऐसे सोसाइटी में इतना ज्यादा अचीव नहीं कर सकते। मान लीजिए क्यों हम सब, आप सब लोग, ज्यादातर लोग अमेरिका की ओर भागते हैं या यूरोपियन कंट्रीज की ओर भागते हैं, और भागते हैं इसीलिए कि वहां जाने पर उनको ज्यादा मिलता है, ज्यादा खुशी मिलती है, ज्यादा धन मिलता है, ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। वो अपने वहां रह करके क्यों नहीं कर सकते? सेम एफर्ट करने पर भी उनको वो अचीवमेंट नहीं मिलता। इसका मतलब है जो आप अचीव कर रहे हो वो आपके इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है, उसमें पूरी की पूरी सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है। धनी गरीब सब देश में है, पर अगर आप किसी अच्छे देश में हैं, अच्छी सोसाइटी में है, तो वहां का गरीब और गरीब देश के गरीब में भी अंतर होता है जी, होता है कि नहीं? भारत में गरीब हो तो आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं कि गरीब का मतलब क्या होगा? इवन भारत में जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास, वो भी मिट्टी के घर में रहता है। जो महीने का सरकारी नियम है भारत में, जो रोज का 30 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। 30 रुपए का मतलब समझते हैं, हाफ डॉलर, लेस देन हाफ डॉलर, 50 सेंट, लेस देन 50 सेंट। अगर आप रोज 60 सेंट कमा लेते हैं भारत में तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर माने जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे वहां खाने पीने के सामान भी सस्ता होगा, 1 किलो चावल भी वहां 40 रुपए 50 रुपए में मिलता है, 100 रुपए में मिलता है, 150 रुपए में मिलता है। अरे यहां एक पुअर आदमी हो ना, महीने का मुझे पक्का आंकड़ा पता नहीं, आप कोई हेल्प करेंगे तो मेरे ख्याल से 3,000 या 1,500 डॉलर, 2,000 डॉलर, 2,000 डॉलर महीने का आप कमाते हैं तो आप पॉवर्टी लाइन में है। आप कहेंगे सोसाइटी अलग है, यहां महंगा मिलता है। कितना महंगा मिलता है? यहां का गरीब आदमी भी सेकेंड हैंड कार लेकर चल सकता है और भारत का गरीब सेकेंड हैंड साइकिल खरीद नहीं सकता। तो गरीबी में भी अंतर होता है सोसाइटी के से, सोसाइटी से हिसाब से। यह ध्यान देने की जरूरत है। मतलब एक अच्छे सोसाइटी का गरीब भी एक बुरा सोसाइटी के धनी से भी बेटर लाइफ जीता है। क्यों? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो सोसाइटी, वो बनता किससे? हमसे बनता है, इंडिविजुअल से बनता है, हमारे कंट्रीब्यूशन से बनता है। आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं वो अगर वहां सब अनपढ़ हो, गंवार हो, हेल्थ कॉन्शियस ना हो, आप बड़े जमींदार हैं, आपके पास लाखों करोड़ों हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इवन आप डॉक्टर भी हैं, तो भी आपके बच्चे रोज बीमार रहेंगे। क्यों? आप घर में कितना बढ़िया हाइजीनिक एटमॉस्फेयर बनाए रखे हो, बच्चा जब भी बाहर निकलेगा वो उस हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहेगा, उन बच्चों के साथ रहेगा, उन बच्चों के साथ खेलेगा, उन सोसाइटी में रहेगा जहां कोई हाइजीन का कंसेप्ट ना हो तो इन्फेक्शन होगा ही। आप खुद कितने गंदे हो, पर अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हेल्थ कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, लोग हाइजीनिक है, तो आप आधे बीमारी वैसे ही जीत जाते हो। तो फर्क पड़ता है ना, आपके लाइफ में कुछ भी है, आप अच्छे हैं बुरे हैं, आपके लाइफ में खुशी है पैसा जो भी कुछ है, ये सिर्फ आपका और ये मेरा अकेला नहीं है। मेरे लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है बहुत सारी चीजों की मिलावट से होता है। इसलिए ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है, मैं जब भी मैं अपनी खुशी ढूंढूं मुझे अपनी खुशी दूसरों के खुशी में भी देखने की जरूरत है। आपकी घर में कोई बीमार हो तो आप दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर करते भी हैं, मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा इमोशनली फर्क नहीं पड़ता, कोई घर में कोई पेन में है, कोई सफर कर रहा है, और आप अपने घर में दिवाली होली नहीं मना सकते। इसीलिए नहीं मना सकते नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए नहीं कि आपके पास घर नहीं है, इसीलिए नहीं कि आपका मन नहीं है, आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। आपकी पड़ोस में मातम हो आप कैसे अपने घर में मिठाइयां खाओगे? रोने की आवाज आ रही हो तो नहीं हो सकता ना, आफ्टर ऑल इमोशन। तो आपकी खुशी पड़ोस में भी अगर रोने का आवाज ना आए, आपके घर में भी रोने का आवाज ना आए, आपके पड़ोस के घर से भी रोने का आवाज ना आए, तब जाकर के आप खुश हो सकते हैं। तो ये जो कलेक्टिव एफर्ट है कलेक्टिव गुड के लिए, यही इसी का नाम आगे हम चर्चा करेंगे, इसी को हमारे वैदिक परंपरा में यज्ञ भी कहा। आपको ट्राई करना है कि बहुत सारे हमारे टीनेज के बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि उनको प्राइवेसी चाहिए, अकेला चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आप इसको फ्रीडम दे दीजिए, एक सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लीजिए, जंगल में छोड़ दीजिए, क्या करेगा अपना फ्रीडम का, प्राइवेसी का? पूरा फ्रीडम है, यूज करो बेटे, पूरी फ्रीडम है, पर वहां कोई भी ह्यूमन बींग नहीं होगा, आप अकेले होंगे। आपकी फ्रीडम की वैल्यू भी उस सोसाइटी के अंदर है जहां आपको फ्रीडम नहीं मिलता। आपको अकेले छोड़ दिया जाए 5-10 साल, सिवाय सिवाय लोनलीनेस की सफरिंग के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अकेले भी तभी एंजॉय करते हैं जब आपकी सराउंडिंग में लोग होते हैं, नहीं तो आप डर लोनलीनेस में आप मर जाते हैं। आप किसी बच्चे को सोसाइटी से अलग कर दीजिए, कभी कभी मिलते एक आधा, कोई जंगल में कोई लड़की छूट गई थी, अब वो अभी काफी दिन पहले न्यूज़पेपर में सोशल मीडिया में काफी आया, 20-25 साल के बाद उसको किसी ने खोज किया जंगल में से लेकर आए अमेरिका में। अब उसके हाव भाव किसी को ना समझ में आए, वो जानवरों की तरह हाव भाव करे, नंगे घूमे, जंगली की तरह रहती थी, वही होगा। आप लोगों को, लोगों से अगर वो सोसाइटी, वो जो ट्रेडिशन है, जो जो एक कम्युनिटी सेंस ऑफ कम्युनिटी हमने एक दूसरे को दे रखा है, उसको आप हटा दीजिए इन द नेम ऑफ प्राइवेसी और इंडिविजुअलिज्म। आप एक ऐसा आगे जाकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो एक कम्युनिटी तो कम होगा, एक फेसलेस मास होगा। जैसे आजकल के बच्चे वो लगे रहते हैं, बच्चे क्या, माँ बाप भी कौन से छोटे हैं, वो भी बड़े बच्चों से भी तो अब ये ज्यादातर माँ बाप भी अब टीनेज के बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जब देखो कहीं भी जाओ, हॉस्पिटल में, किसी स्टोर में, वो भी लगे रहते हैं, गाड़ी में लगे रहते हैं, सामने वाला आगे पीछे कोई किसी को देखता भी नहीं है, सब लगे रहते हैं। वो कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। मुझे तो लगता है बच्चों से माँ बाप सीखते हैं, ये हमने ये नए जमाने में हाँ जकल देखते हैं। मतलब आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं भी उन्हीं में से हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो सुन रहे हैं वो सब खराब हो गया और जो बोल रहे अच्छा हो गया। मतलब सोसाइटी कैसे चलता है, है? तो उससे होता क्या है, एक दूसरे से हमारा कोई कम्युनिकेशन जितना कम होगा, इमोशनल इंटरैक्शन जितना कम होगा, उतना हम फेसलेस ह्यूमन बीइंग तो बनते जाएंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग तो अंदर से ऊपर से होंगे, अंदर से रोबोटिक वे में लाइफ जीतते हैं। और उसका परिणाम क्या है, लोनलीनेस ज्यादा होता है, डिप्रेशन ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जाता है। ये सारी चीजें बताने का एक ही कंसेप्ट है कि हम दूसरों के बिना जी नहीं सकते, इसीलिए हमें दूसरों को साथ लेकर चलना है। और ईश्वर ने दुनिया भी ऐसी ही बनाई है, ये जो क्रिएशन है ना, ओवरऑल कॉस्मस है। इस कॉस्मस में से आप किसी एक को हटा दीजिए, दुनिया ठीक से नहीं रहेगी। सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना, प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम पर, सोलर सिस्टम गैलेक्सी पर, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हवा, पानी, आग, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम ये पेड़ पौधे जानवर, इनके बिना जी नहीं सकते, कोई किसी के बिना जी नहीं सकता। इसी को आजकल कहते हैं, नया वर्ड देते हैं, इकोसिस्टम। उसमें सब आता है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जो आपके बैकयार्ड में मिट्टी के नीचे होते हैं, अर्थवर्म भी, वो भी आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। इसी को हमारे पूर्वजों ने नाम दिया देवता, कंसेप्ट ऑफ देवता। और जो एफर्ट आप उसके लिए करते हैं, उसकी नाम दिया यज्ञ। वो क्या, दूसरों की उन्नति में खुद की उन्नति देखो, केवल और केवल अपनी उन्नति में उन्नति संतुष्ट मत हो जाओ। तुम्हारी उन्नति, इंडिविजुअल उन्नति भी जरूरी है, पर तभी वो उन्नति फायदे की है, तभी इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट फायदे की है, जब सोसाइटी डेवलप्ड हो। आप एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी में खुद डेवलप्ड हो करके कुछ नहीं अचीव कर सकते हो। इसी का नाम है यज्ञ। यज्ञ का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है दानात दाने देव पूजायाम संगति करणी। दान ऑफर करो, शेयर करो, दो, कुछ बांटो, जो तुम्हारे पास है वो दूसरों को भी दो। सारा नहीं, मतलब अपने आप को गरीब बना के दूसरों को थोड़े ही धनी बनाना है, मतलब इतना निर्दयी भी नहीं है हम लोग। और एक इंटरेस्टिंग बात चलते चलते बोले, आप देखेंगे जितने भी रिलीजियन है इंक्लूडिंग हिंदुइज्म में भी, ये रिलीजियस एक कंसेप्ट है 10% का। अब कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 14 है, मतलब अपनी कमाई का 10% आप कंट्रीब्यूट करो। बहुत सारे रिलीजियस लोग को यूरोपियन कंट्रीज में या क्रिश्चियन कंट्रीज में स्टेट्स हैं, तो वहां गवर्नमेंट के लेवल में भी कुछ परसेंटेज वो चर्च को दे देते हैं, सरकार जो टैक्स लेता है अलग है। ये जो टैक्स का कंसेप्ट वही है, टैक्स क्या है, सोसाइटी के लिए ऑफर करो, आप खुद तो नहीं दोगे, जबरदस्ती हम आपसे ले लेंगे, और वो सोसाइटी किसी पड़ोसी की सोसाइटी के नहीं, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, मतलब सोसाइटी और तुम दो अलग अलग चीजें नहीं है। वो रोड्स बनेगा तुम भी यूज करोगे, तुम्हारा पड़ोसी भी, दुश्मन भी यूज करेगा, तुम्हारा फ्रेंड भी यूज करेगा। वो पानी की पाइप जो तुम भी यूज करोगे, जो साफ पानी मिलेगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, जो लाइट्स होंगे उसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, वो सब में तुम्हारा हिस्सा रहेगा। पर ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते हो, ये सरकार वही यज्ञ करते हैं दुनिया के हर देश में, पर सरकार जबरदस्ती करता है क्योंकि सामान्य लोग देते नहीं है। यज्ञ है दान, ऑफर करो दूसरों पर एहसान करने के लिए नहीं, खुद की फायदे के लिए। इट्स ए स्मार्ट डिसीजन। और खुद की फायदा सिर्फ स्टूपिड आदमी भी सोचता है कि मैं अपना भलाई कर सकता हूं, स्मार्ट लोग समझते हैं मैं अपनी भलाई उतना कर, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10-20% कर सकता हूं, बाकी मेरी भलाई तो कलेक्टिव वेलबींग के साथ अटैच्ड है, मैं उसे अलग होकर नहीं। इसीलिए देना। अगला कहा देव पूजा, जो भी सोसाइटी में समाज में हमसे बड़े हैं, कोई ज्ञान से बड़ा है, कोई धन से बड़ा है, कोई विद्या से बड़ा है, कोई स्किल से बड़ा है, कोई पावर में बड़ा है, बड़ा का मतलब जिनका हमारे लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन है, उनको रेस्पेक्ट करो। तो शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मां बाप हैं देवता, आचार्य है देवता, अतिथि है देवता, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा राजा, जो भी तुम्हारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, वो इनसेंटिएंट हो या सेंटिएंट हो, वो देवता है, उसको रेस्पेक्ट करना, उसका केयर करना, उसका ख्याल रखना, ये तुम्हारा काम है। ये यज्ञ का सेकेंड पिलर है। जब आप हवन भी करते हैं, ये भी उसी ब्रोडर यज्ञ का एक पार्ट है, जिसमें आप अग्नि जलाते हैं, घी और सामग्री डालते हैं, ऑफर करते हैं ना घी और सामग्री, फिर क्या करते हैं देव पूजा, अब ईश्वर की उसमें पूजा करते हैं, वो भी देवता है। और तीसरा कहा संगतीकरण, मिलजुल के रहना, इकट्ठा होना, यूनिटी बनाना। हवन में भी आप अकेले हवन नहीं करते ना, आपको ग्रुप में बैठते हैं, दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को, वेल्यूशर को, सबको बुलाते हैं जब भी आप हवन करते हैं, घर में करें बाहर करें, ये जरूरी है, इट्स पार्ट ऑफ दैट। संगति बहुत जरूरी है, यही इसीलिए प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं। हमने सारी दुनिया चिंतित है कि जो जनरेशन, नए जनरेशन जो संगति से दूर जा रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बीच के कारण वो रिश्तों, रिलेशनशिप में एक दूसरे से मिलने जुलने कैसे दूर जा रहा है। ये बेसिकली प्रॉब्लम किसका होगा, इंडिविजुअल का, मेरा ही होगा, मुझे ही ज्यादा लोनली फील होगी। संगति ये यज्ञ का बेसिक कंसेप्ट है। और जो आज इसको हम कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं, एक दूसरे को के लिए ऑफर करके आगे बढ़ना, जो गवर्नमेंट जिस तरह की जो कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ये उसी यज्ञ कंसेप्ट का एक ब्रॉडर सेंस है। गीता में बड़ा सुंदर श्लोक है, इस यज्ञ को उसी भाव को, वो 9th प्रिंसिपल के भाव के साथ आप कनेक्ट करके देखिए, सोसाइटी गवर्नमेंट को कनेक्ट करके देखिए। वो कहता है यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। मीनिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में काफी डिफरेंसेस है, आपको लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे से कोई इनका रिलेशनशिप नहीं है। अगर लिटरेरी मीनिंग लेते हैं, वो कहता है यज्ञ से जो बचा हुआ होता है, जब आप हवन करते हैं, जो आहुति देते हैं, उसे बचा हुआ जो प्रसाद के रूप में यूज करते हैं, उसी को कहते हैं यज्ञ से बचा हुआ चीजों को खाने वाला सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अगला लाइन कहता है अकेले खाने वाला जो अपने लिए सिर्फ बनाता है, अपने लिए कमाता है, वो सिर्फ पाप ही खाता है। तो इसका मतलब ऊपर वाली लाइन जो यज्ञ की बात कही, वो यज्ञ सिर्फ और सिर्फ ये अग्नि में घी की आहुति देने की बात नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट का अपोजिट है। जो खुद की डेवलपमेंट में ही खुश होता है, अपनी प्रोग्रेस में ही सिर्फ खुश होता है, अपनी खुशी में ही, अपनी कमाई में ही खुश होता है, वो पाप ही खाता है। और जो यज्ञ अपना शेयर कर, समाज के लिए जो उसकी शेयर करने की जरूरत है, जो कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है, वो कंट्रीब्यूशन देने के बाद जब वो उसको यूज करता है, वो पापों से मुक्त होता है। ये पाप और पुण्य के कंसेप्ट को और थोड़ा ब्रॉडर में उसी गीता में अगले श्लोक में कहता है सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, कहता है सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्तु इष्टकामधोक्। कहता है ईश्वर ने, द क्रिएटर, वाइल क्रिएटिंग द यूनिवर्स, पुट द कंसेप्ट ऑफ यज्ञ इन एवरीथिंग and adorned that every act of yours should be done with the concept of this yajna underlying it. If every act of yours is done with the underlying conception of yajna, then the world will yield to you what you desire. ठीक है, तो क्या भाव है? कहते ईश्वर ने जब संसार को बनाया, हम सबको पैदा किया, पैदा करने के साथ ही एक कंसेप्ट भी साथ में पैदा किया, वो कंसेप्ट था यज्ञ। और ये ऑर्डर दिया ह्यूमन बींग्स को, क्या कि तुम्हें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, अपने डिजायर्स को, इच्छाओं को पूरा करना है, तो इस यज्ञ के द्वारा ही कर सकते हो। क्या भाव है? भाव यही है, तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी तभी जब तुम ऐसा एक सोसाइटी बनाओ जहां तुम्हारी इच्छा पूरी होने की सारी फैसिलिटीज हो। तुम अपने ज्ञान से अगर चाहते हो कि मेरे इतने ज्ञान है, मैं उस स्किल है, मैं उसे पैसा कमाऊं, करोड़ों कमाऊं, पर तुम एक ऐसे देश में रहते हो जहां सारे इलिटरेट हो, कैसे कमाओगे? तुम्हारा ज्ञान का वैल्यू वही होगा ना जहां लिटरेसी हो, एजुकेटेड लोग हो। तुम एक रूल बनाते हो कि हमारे सिटी में ये रूल है, इसको सब फॉलो करेंगे, ये सिर्फ वही होगा उसी सिटी में फॉलो होगा ना जिस सिटी में सबको डिसिप्लिन सिखाया गया हो, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। आप लोग कितना यहां क्लीन रहते हैं, किसी कहीं भी आपको कोई ना कागज फेंकते हैं, ना पत्ता फेंकते हैं, ना कुछ भी फेंकते हैं। जब इंडिया पहुंच जाते हैं, शुरू में 5-7 दिन बड़े मुश्किल होता है, केला खाया, छिलका पकड़ के घूमो, कहीं कोई है ही नहीं डस्टबिन, ट्रासबिन कहीं है ही नहीं, ढूंढते रहो। 2-4 दिन तो अमेरिकन कंसेप्ट बना रहता है, नीचे नहीं फेंकना, पॉकेट में रख दो, यहां रख दो। फिर बाद में लगता है सब दुनिया यही करे तो मैं क्यों पकड़ के घूमू, चलो जहां मर्जी फेंक दो। अच्छे सा अच्छा आदमी भी खराब माहौल में खराब हो जाता है, सारे नहीं होते, बहुत लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, पर हम तो कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं ना। और खराब से खराब व्यक्ति जो कितना भी इनडिसिप्लिन्ड हो, एक ऐसी सोसाइटी में, सिटी में आता है, वो सिंगापुर में देखिए, वहां आप थूक भी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, आपको पनिशमेंट लगता है तो आदमी 10 बार सोचता है। अमेरिका में तो उसकी तो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसीलिए कहा, तुम यज्ञ से एक ऐसा कमननेस बनाओगे जहां तुम्हारा गुड भी, तुम्हारी अच्छाई भी उसी का पार्ट बनेगा। तो इसीलिए ईश्वर ने ये मंत्र कहता है कि आप उस यज्ञ को, यज्ञ अगेन वो कलेक्टिव वेलबींग पर ध्यान दो। कोई पूछे कि मैं क्यों, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूं, मैं क्यों दूसरों की भलाई सोचूं? अगर दूसरा कोई आगे नहीं बढ़ता है, हो सकता है वो लेजी हो, मेहनत नहीं करता हो, और मैं मेहनत किया इसलिए बढ़ गया, ऐसा नहीं है। सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आते हैं। सब चाहकर भी, किसी गरीब घर में पैदा हुआ टैलेंटेड बच्चा भी किसी मिडिल क्लास में एवरेज के बच्चे से भी ज्यादा कम ज्ञान रखता है, क्योंकि उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है। तो वेद का मंत्र ये कहता है, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बधयेत् सतस्य नार्यमाणं पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादीक। बहुत सुंदर मंत्र है, थोड़ा स्ट्रांग वर्ड है। कहता है, द फुलिश मैन दैट शोज नो हॉस्पिटलिटी एक्वायर्स फूड इन वेन, एंड आई स्पीक द ट्रूथ द ऋषि सेज, व्हेन आई से दैट फूड शैल कॉज हिज रून, आई ही फाइंड्स नो फेथफुल कॉमरेड नॉर ए फ्रेंड, ही हु ईट्स अलोन वेरीली ईट्स नथिंग बट ए सिन। जो अकेला खाता है उस और कुछ नहीं, सिर्फ पाप खाता है, और अकेला खाने वाले के लाइफ में कुछ नहीं होता है। खाने वाला मतलब खाना नहीं, अकेला जो जीता है, जो अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचता। देवियों सज्जनों, आप सब, हम सब अगर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा पाते हैं, कोई खुशी है, कोई सुख है, कोई भोग करते हैं, क्योंकि हम लाइफ में कुछ ना कुछ वही काम करते हैं, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति ढूंढने का जो यज्ञ का कंसेप्ट है। हो सकता है हम थोड़ा नैरो माइंडेड होकर के करते हो, जो बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड होगा वो सिर्फ अपनी फैमिली को फोकस करेगा, पर वो उस यज्ञ का भी, वो कंसेप्ट ऑफ यज्ञ का वो सबसे पहला स्टेप है। मैं कमाता हूं, अकेले नहीं खाता हूं, बच्चे हैं, मां बाप हैं, पत्नी है, पति हैं, हम शेयर करते हैं। अकेले नहीं, अकेला कमाने वाला भी अकेला नहीं खाता है। क्यों? और उसी फैमिली में से उसको सुख मिलता है। कितने लोग जिनके स्पाउस नहीं है, पत्नी या पति अब नहीं है, सेपरेटेड हैं, या वो अब इस दुनिया में नहीं है, बच्चे पास में नहीं है, ऐसे लोगों को पूछिए जो अकेले रहते हैं घर में। सब कुछ है, बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, लाइफ कितना मिजरेबल है। तो मेरा सुख मेरे परिवार के सुख के साथ जुड़ा हुआ है, साथ में, इसीलिए मैं करता हूं। मैं उन पर एहसान नहीं करता हूं, वो मेरे पर भी एहसान नहीं करते, एक म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है। हम एक दूसरे के साथ देते हैं, मैं कमा करके बांटता हूं, वो और कुछ करके, वो पका करके बांटती है, कोई प्यार से बांटती, अलग अलग तरह से हम एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। पाप का अर्थ क्या होता है? पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। पापी मतलब आप दुखी होंगे। अकेले कमाकर अपने लिए खर्च करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है, दुख पाप का कॉन्सिक्वेंस होता है। इसीलिए शेयर करना जरूरी है, शेयर इन द सेंस दूसरों की खुशी में भी साथ शेयर करना। क्यों करें? ऋग्वेद का और एक सुंदर मंत्र है, कहता है, समोचित हस्तौ न समम विविष्ट सम्मातरा चिन्न समं दुहाते यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाति चित संतौ न समं प्रुणीतः। देखिए लाखों साल पहले का वेद मंत्र आज भी उतने ही कंटेम्प्रेरी बात करता है। कहता है आपके दोनों हाथ हैं, आपके ही दोनों हाथ हैं, बराबर हैं, पर दोनों एक जैसे काम नहीं कर सकते। दोनों हाथ की एबिलिटी अलग अलग है। जो लेफ्टिस्ट हैं उनके लेफ्ट हैंड में ज्यादा स्टेमिना होता है, ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा काम कर सकते हैं। राइट नहीं, जो राइटिस्ट हैं, राइट हैंड जिसको यूज करते हैं, वो 90% काम लेफ्ट में नहीं कर सकते। दोनों की अलग अलग नेचर है, उनकी ट्रेनिंग है, अपब्रिंगिंग है, यूज है, दोनों बराबर है। ये मत कभी एक्सपेक्ट करना है कि दोनों हाथ है तो दोनों एक जैसा काम क्यों नहीं कर सकते। करता है एक ही गाय के दोनों बछड़े हैं, पर दोनों बछड़े एक जैसा दूध नहीं देते हैं। एक ही मां बाप के दो ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, दोनों का टैलेंट अलग है, दोनों के नेचर में भी अलग है। शकल सूरत से एक जैसा होता होगा, आवाज में एक जैसा होता होगा, पर दोनों के अंडरस्टैंडिंग में, समझ में, टैलेंट में, इंटरेस्ट में अलगपन दिखता है, एबिलिटी में अलगपन दिखता है। इसीलिए ये मत एक्सपेक्ट करो कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, सारी दुनिया क्यों नहीं है, मैं क्यों उनको शेयर करूं, हो ही नहीं सकता। ये जो यूनिवर्स है जिससे हमें सो कॉल्ड अनइवन लगता है, अन इनबैलेंस्ड लगता है, ये इंबैलेंस्ड ही यूनिवर्स की बैलेंस है। अगर हमारे तरह सब दुनिया सोचने लगता, ईश्वर सोचने लगता, तो पहाड़ और समंदर एक होते, बड़े पेड़ और घास एक होता। पर कल्पना करिए अगर सारे पेड़ घास भी उतने ही ऊंचा होता जितना कोई भी नॉर्मल पेड़, तो क्या हालत होता दुनिया का? ना कोई ऊंचा होता, ना कोई नीचा होता, ना कोई पहाड़ होता, ना कोई नदी होती, ना कोई समंदर होता, तो आपकी लाइफ कैसी होती? ये जो विषमता है, जो अनइवननेस है, ये यूनिवर्स की ब्यूटी है। ह्यूमन सोसाइटी में, संसार में भी, प्राणियों में भी अलग अलग कारणों से वो अनइवननेस है। हमारा काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल व्हिच इज पार्ट ऑफ सोसाइटी की कंसेप्ट लेकर चलें, तब जाकर हमारी उन्नति होगी। इसी को गीता का यह सुंदर श्लोक कहता है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। लिटरेरी देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लिटरेरी मीनिंग है कि तुम देवताओं की भावना करो, मतलब देवताओं को खुश करो, देवता तुम्हें खुश करेंगे, एक दूसरे को खुश करते हुए दोनों ही श्रेय को या लाइफ में जो खुशी है उसको आप पाओगे। देवता अभी बताया, जिनका भी तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारे बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन तुम्हारे लाइफ में है, और तुम्हारे मां बाप का भी कंट्रीब्यूशन तुम्हारे लाइफ में, पेरेंट्स का बच्चों पर है, बच्चों की पेरेंट्स पर है, पति का पत्नी पर है, पत्नी का पति पर है, तुम्हारे पड़ोस पर है, पड़ोसी का तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी पर है, दूसरे कम्युनिटी का तुम्हारे कम्युनिटी पर है। एक दूसरे पर हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे कारण प्लांट्स हैं, प्लांट्स के कारण हम हैं। हम उनका ख्याल करें, वो हमारे ख्याल करेंगे। हम इस इकोसिस्टम का ध्यान रखें, नहीं रख रहे, इसी का रिजल्ट है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग का आप देखते हैं, क्लाइमेट चेंज देखते हैं, वो क्या है? इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग नहीं, एक कंट्री भी जब इंडिविजुअली बिहेव करता है, एक नेशन भी जब इंडिविजुअली बिहेव करता है, तो क्या होता है? पूरी सोसाइटी को सफर करना पड़ता है। 8-10 देश जो नॉलेज में बहुत आगे बढ़ गए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करके इस यूनिवर्स को, इस नेचर को एक्सप्लोइट किया, इतना ज्यादा एक्सप्लोइट किया मर्सीलेसली एक्सप्लोइट किया, उसका रिजल्ट है कि सारी की सारी जो प्लानेट है वो सफर कर रही है ग्लोबल वार्मिंग से लेकर क्लाइमेट चेंज तक। यही है, जब तुम अपनी उन्नति दूसरों में नहीं देखते हो तो यही होता है, और इसी का रिजल्ट बिगर सेंस में हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में देखते हैं। इसी का छोटा नमूना आप अपने फैमिली में देख सकते हैं। इसीलिए कहा तुम दूसरों का ध्यान रखो, तुम पानी का ध्यान रखो, पानी को टेक केयर करो, पानी भी तुम्हारा टेक केयर करेगा। आपको पता है आज दुनिया में बहुत सारे देशों में शहरों में पानी की ऐसी बुरी हालत है, अगली जो लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, जो ज्यादातर जो मारकाट होगी वो पानी के कारण होगी। आज भारत में भी जब भी गर्मी पड़ती है सैकड़ों शहरों में, धीरे धीरे एक दो शहर से लेकर आज भारत के सैकड़ों शहरों में गर्मी के दिनों में हजारों इंसिडेंट होते हैं मारपीट की, और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। रिमेंबर इट्स द बिगिनिंग, किसी के लिए, पानी के लिए। वो पानी कहां गया, हमने ही एक्सप्लोइट किया, ट्यूबवेल लगा के खेतों में ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सरकार ने भी हमें प्रमोट किया, तो हमने जमीन के नीचे की पानी सारा सोख लिया, मिसयूज किया पैसे कमाने के लिए। 10 20 50 साल तक खूब कमाए किसानों ने, बाकी लोगों ने, उसके बाद जमीन की पानी खत्म हो गई, नदियों को हमने गंदा कर दिया, अब पानी नहीं मिल रही है, खरीद के पी रहे हैं। पानी का ख्याल रखो, पानी तुम्हारा ख्याल रखेगा। हवा का ख्याल रखो, हवा तुम्हारा ख्याल रखेगा। पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी तुम्हारा ख्याल रखेगा। आकाश का ख्याल रखो, आकाश तुम्हारा ख्याल रखेगा। एक दूसरे की ख्याल रखो, इसी का नाम यज्ञ है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा एक दूसरे की, वो सुख होगा। देवियों सज्जनों, यही इस नियम का सामान्य अर्थ है। अपनी खुशी जरूरी है, पर जो स्टूपिड होते हैं, फुलिश होते हैं, वो अपनी खुशी खुद में ढूंढते हैं, खुद की कमाई से ढूंढते हैं, और जो स्मार्ट होते हैं वो अपनी खुशी में संतुष्ट नहीं होते हैं। वो दूसरों की खुशी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी उनकी खुशी परमानेंट हो, ज्यादा बड़े आकार में हो। जब तक हम अपने आप को सोसाइटी का, कम्युनिटी की पार्ट नहीं समझेंगे, तब तक हमारी उन्नति अधूरी है। यही इसका भाव है, वो हम उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। हम जिस शहर में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट करके खुद देख सकते हैं। हम अपने आप को इस ईश्वर के विशाल अम्ब्रेला के एक विशाल कॉस्मस का भी एक पार्ट समझें, और जहां भी रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, उसके पार्ट समझें, और अपने इंडिविजुअल सुख को भी ढूंढे, तभी हमारी भी भलाई होगी, समाज की भी भलाई, बाकियों की भी भलाई, और उनकी भलाई में हमारी भी भलाई होगी। ओम शांति।